एज़रा अध्याय एक। कोरेश की राज आज्ञा। फारस के राजा कोरेश के शासन के पहले साल में यिर्मयाह द्वारा कही गई यहावे की भविष्यवाणी पूरी करने के उद्देश्य से यहावे ने फारस के राजा की आत्मा को उभारा। फलस्वरूप उसने सभी राज्य में यह लिखित घोषणा करवा दी। फारस के राजा कोरेश का आदेश यह है, यहावे ने जो स्वर्ग के परमेश्वर है मुझे सारी पृथ्वी के राज्यों पर अधिकार दिया है। उन्होंने ही मुझे यरूशलेम नगर में जो यहूदिया प्रदेश में है उनके लिए एक भवन बनाने के लिए चुना है। आप लोगों में से जो कोई यहावे की प्रजा में से है आपके परमेश्वर आपके साथ रहे। आप यहूदिया प्रदेश के यरूशलेम को जाए तथा यहावे इसराइल के परमेश्वर के लिए इस भवन को दोबारा बनाए। यह वही परमेश्वर है जो यरूशलेम में है। किसी भी स्थान पर परमेश्वर के किसी भी जन को यदि वह अब तक जीवित है उस स्थान के नागरिक चांदी सोना अन्य वस्तुएं पशु एवं स्वेच्छा से भेंटे देकर यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उसकी सहायता करें तब यहूदा एवं बिन्यामीन के कुलों के प्रधान पुरोहित तथा लेवी तैयार हो गए। हर एक वह जिस किसी के हृदय को परमेश्वर ने उकसाया कि यरूशलेम में यहावे के भवन को दोबारा से बनाए, उनके पड़ोसियों ने उन्हें चांदी सोना अन्य सामग्री कीमती वस्तुएं पशु देकर प्रोत्साहित किया तथा इनके अलावा उन्होंने इन्हें अपनी इच्छा से भेंटे भी दे दी। साथ ही राजा कोरेश यहावे के भवन की वस्तुएं भी निकाल लाया जो नबूकदनेज़र यरूशलेम से ले आया था और अपने देवताओं के भवन में रख दिया था। फारस के राजा कोरेश के खजांची मिथ्रेदात के द्वारा इन बर्तनों को मंगवाया तथा यहूदिया के शासक शेषबाज़र के सामने इनकी गिनती कर दी। इन बर्तनों की संख्या इस प्रकार थी, सोने की चिलमचियां 30, चांदी की चिलमचियां 1000, दूसरे कटोरे 29, सोने की कटोरियां 30, समान चांदी की कटोरियां 410, अलग अलग बर्तन 1000, सोने और चांदी के कुल बर्तनों की संख्या 5400 थी। शेषबाज़र इन सभी को उन बंदियों के साथ बाबेल से यरूशलेम ले आया। एज़रा अध्याय 2। लौट रहे निर्वासितों की सूची। इस प्रदेश के लोग जो बाबेल के राजा नबूकदनेज़र द्वारा बंधुआई में ले जाए गए थे और जो बंधुआई से यहूदिया और यरूशलेम अपने अपने नगर को लौट आए थे वे इस प्रकार है। ये वे हैं जो ज़ेरुबाबेल के साथ आए थे, येशुआ, नेहेमिया, सेराइया, रेलाहिया, मोर्दकै, बिलशान, मिसपार, बिगवाई, रेहूम और बहना। इसराइली प्रजा के पुरुषों की संख्या अपने अपने कुलों के अनुसार निम्नलिखित है। पारोश 2172, शेपाथिया 372, आरा 775, पहात मोआब के वंशजों में से येशुआ एव योआब के वंशज 2812, एलाम 1254, जत्तू 945, जक्काई 760, बानी 642, बेबाई 623, अजगाद 1222, अदोनिकम 666, बिगवाई 2056, आदीन 454, हिजकिया की ओर से अतेर के वंशज 98, बेजाई के वंशज 323, यारो के वंशज 112, हाशूम 223, गिब्बर 95, बेथलेहम के निवासी 123, नेतोपाह के निवासी 56, अनाथोत के निवासी 128, अजमावेत के निवासी 42, किरियत्यारीम के कफीरा तथा बैरोत के निवासी 743, रामा तथा गेबा के निवासी 621, मिकमाश के निवासी 122, बेथेल तथा अय के निवासी 223, नेबो के निवासी 52, मकबीश के निवासी 156, उस अन्य एलाम के वंशज 1254, हारीम के वंशज 320, लोद, हदीद तथा ओनो 725, येरिखो के निवासी 345, सेनहा 3630, पुरोहित येशुआ के परिवार से येधाइया के वंशज 943, इम्मर 1052, पशहूर 1247, हारीम 1017, लेवी होदविया के वंशजों में से कदमियेल तथा येशुआ होदविया के वंशज 74, गायक आसफ के वंशज 128, द्वारपाल शल्लूम अतेर तालमोन अकूब अतीता और शेबाई 139, मंदिर सेवक इनके वंशज थे जीहा आसूफा तबोत केरोस सियाह पदोन लेबाना हागाभा अकूब हागाब शामलाई अनान गिधेल गाहर रेयाहिया रेजीन नेकोदा गज्जाम उज्जा पासे बेसाई आसना मियूनी नेफिसिम बकबूक हकूफा हरहूर बाजलूत मेहिदा हर्षा बारकोस सीसरा तेमा नेजिया आतीफा शलोमोन के सेवकों के वंशज असोफेरेत पेरुदा सोताई याला दारकोन गिद्धेल शेपाथिया अथील ओचेरेत हज़ेबाइम आमी मंदिर के सेवक और शलोमोन के सेवकों की कुल गिनती 392। ये वे हैं जो तेल मेला तेल हर्षा करूब अद्धान तथा इमर से आए तथा इनके पास अपनी वंशावली के सबूत नहीं थे कि वे इज़राइल के वंशज थे भी या नहीं। देलाहिया के वंशज तोबिया के वंशज तथा नेकोदा के वंशज 652। पुरोहितों में ओबाइया के वंशज अक्कोज के वंशज तथा बारजिल्लई जिसने गिलादवासी बारजिल्लई की पुत्रियों में से एक के साथ विवाह किया था और उसने उन्हीं का नाम रख लिया। इन्होंने अपने पुरखों के पंजीकरण की खोज की किंतु इन्हें सच्चाई मालूम ना हो सकी, तब इन्हें सांस्कृतिक रूप से अपवित्र माना गया तथा इन्हें पुरोहित जवाबदारी से दूर रखा गया। अधिपति ने उन्हें आदेश दिया कि वे उस समय तक अति पवित्र भोजन ना खाए जब तक वहां कोई ऐसा पुरोहित ना हो जो उरीम तथा थुम्मीम से सलाह ना ले ले। सारी सभा की पूरी संख्या हुई 42,360। इनके अलावा 7,337 दास दासियां तथा 200 गायक गायिकाएं भी थी। उनके 736 घोड़े 235 खच्चर 435 ऊंट तथा 6,720 गधे थे। कुलों के कुछ प्रधान जब यरूशलेम में यहावे के भवन में पहुंचे, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के भवन को उसी नींव पर दोबारा बनाने के लिए दान दिया। उन्होंने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस काम के लिए 61,000 सोने के सिक्के 5,000 चांदी के सिक्के तथा 100 पुरोहित वस्त्र खजाने में जमा करा दिए। इस समय पुरोहित लेवी द्वारपाल गायक कुछ सामान्य प्राजाजन मंदिर के सेवक जो सभी इज़राइल वंशज ही थे अपने अपने नगरों में रहने लगे। पूरा इज़राइल अपने अपने नगर में बस चुका था। एज़रा अध्याय 3। वेदी का पुनर्निर्माण। इस समय सारा इज़राइल अपने अपने ठहराए गए नगर में बस चुका था। सातवें महीने वे सभी यरूशलेम इकट्ठा हो गए। तब योजादक के पुत्र येशुआ तथा उसके भाइयों ने जो पुरोहित थे शियल्तियेल के पुत्र जेरुबाबेल तथा उसके भाइयों ने मिलकर इज़राइल के परमेश्वर के लिए उस वेदी को बनाया जिस पर होम बलि चढ़ाई जानी थी, जैसा कि परमेश्वर के जन मोशे की व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने उसी की नींव पर इस वेदी को बनाया, क्योंकि उन्हें पास वाले देशों के लोगों का बहुत डर था। उन्होंने उस वेदी पर यहावे को होम बलि चढ़ाई, सुबह को होम बलि और शाम को होम बलि। उन्होंने झोपड़ियों का उत्सव लिखी हुई विधि के अनुसार मनाया तथा हर रोज उन्होंने ठहराई गई संख्या में होम बलियां चढ़ाई, जैसा कि हर रोज के लिए इस संबंध में नियम था। इसके बाद होम बलि नित्य चढ़ाए जाने लगे, उसी प्रकार नए चांद के उत्सवों में तथा यहावे के लिए ठहराए गए पवित्र उत्सवों में तथा हर एक के लिए यहावे को स्वेच्छा बलि चढ़ाने में भी, नए चांद के उत्सवों में, यहावे के लिए ठहराए गए उत्सवों में जो पवित्र किए गए थे तथा हर एक के लिए जो यहावे को स्वेच्छा बलि चढ़ाना चाहता था नित्यंत आ गए। सातवें महीने के पहले दिन से ही उन्होंने यहावे के लिए होम बलि चढ़ाना शुरू कर दिया था, किंतु यहावे के भवन की नींव नहीं रखी गई थी। मंदिर का पुनर्निर्माण। इसलिए उन्होंने राजमिस्त्रियों एवं कारीगरों को सिक्के, सीदोनियों एवं सोरियों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा कोरेश की अनुमति के अनुसार लबानोन के समुद्र तट पर स्थित योपा तक लकड़ी पहुंचा दे। उनके यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को पहुंचने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शियातेल के पुत्र जेरुबाबेल तथा योजादक के पुत्र येशुआ ने तथा उनके सारे पुरोहित भाइयों तथा लेवियों ने तथा उन सभी ने जो बंधुआई से यरूशलेम आ चुके थे काम शुरू कर दिया। उन्होंने यहावे के भवन को दोबारा बनाने के काम के लिए ऐसे लेवियों को चुना जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक थी। इसके बाद येशुआ ने अपने पुत्रों तथा रिश्तेदारों के साथ मिलकर कदमीएल तथा उसके पुत्रों के साथ, यहूदा के पुत्रों के साथ तथा हेनादाद उसके पुत्रों तथा रिश्तेदारों के साथ मिलकर जो लेवी थे, परमेश्वर के भवन के कारीगरों की निगरानी की जवाबदारी ले ली। जब राजमिस्त्रियों ने यहावे के भवन की नींव डाल दी, तब पुरोहित अपने कपड़ों में शोफार नरसिंगे लेकर खड़े हो गए। लेवी तथा आसफ के पुत्र झांझे लेकर इज़राइल के राजा दाविद द्वारा बताई गई विधि के अनुसार यहावे की स्तुति करने के लिए तैयार हो गए। जब यहावे के भवन की नींव रखी गई, तब उनकी स्तुति का विषय था यहावे भले हैं तथा इज़राइल पर उनका अपार प्रेम सदाकाल का है। उन्होंने अपने गीतों में स्तुति और आभार प्रकट किए। उपस्थित सारे समुदाय ने उनके गीतों पर बहुत ही ऊंचे शब्द में यहावे का जय जयकार किया। जबकि वे बूढ़े व्यक्ति जिन्होंने पहले के भवन को देखा था, अनेक पुरोहित, लेवी एवं मुख्य प्रधान इस भवन की नींव के रखे जाने पर उसे देखकर ऊंची आवाज में रो रहे थे, जबकि कुछ खुशी से जय जयकार कर रहे थे। परिणाम स्वरूप रोने की आवाज और खुशी की आवाज में अंतर पहचानना असंभव हो गया, क्योंकि लोग बहुत ही ऊंची आवाज में जय जयकार कर रहे थे। यह आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। एज़रा अध्याय 4। विरोधियों द्वारा उत्पन्न बाधा। जब यहूदिया तथा बिन्यामीन प्रदेश के शत्रुओं को यह मालूम चला कि बंधुआई से लौट आए लोग इज़राइल के यहावे परमेश्वर के लिए भवन बना रहे हैं, तब उन्होंने जेरुबाबेल तथा कुल के प्रधानों से जाकर विनती की, हमें अनुमति दीजिए कि हम इस भवन बनाने के काम में आप लोगों के साथ जुट जाए, क्योंकि आपके समान हम भी आपके ही परमेश्वर के आराधक हैं। हम अश्शूर के राजा एसार हदन के शासनकाल से इन्हीं परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाते आ रहे हैं जो हमें यहाँ लेकर आए हैं। किंतु जेरुबाबेल, येशुआ तथा कुल के प्रधानों ने उन्हें उत्तर दिया, तुम में तथा हम में हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने के संबंध में कुछ भी संबंध नहीं है। इज़राइल के यहावे के लिए हम ही मिलकर यह बनाएंगे, जैसा कि फारस के राजा कोरेश ने हमें आज्ञा दी है। यह देख उस देश के लोग यहूदा के वंशजों को डराते हुए इस काम में रुकावट डालने लगे। इस उद्देश्य से उन लोगों ने फारस देश के मंत्रियों को घूस दे दी कि वे इस काम में रुकावट पैदा करें। यह सिर्फ फारस के शासक कोरेश के ही नहीं बल्कि फारस पर दारियावेश के शासन के समय तक करते रहे। अहश्वेरोश और अर्तहशस्ता के प्रतिरोध। उन्होंने अहश्वेरोश के शासनकाल की शुरुआत में ही यहूदिया एवं यरूशलेम निवासियों के विरुद्ध एक आरोप पत्र लिख कर दिया। अर्तहशस्ता के शासनकाल में बिशलाम, मिथ्रेदात, तबील तथा उसके बाकी सहयोगियों ने मिलकर फारस के राजा अर्तहशस्ता को पत्र लिखा। इस पत्र को अरामी भाषा में लिखा गया था, किंतु इसका अनुवाद किया गया था। तब शासन अधिकारी रहूम और सचिव शिमशाई ने यरूशलेम के लोगों के विरुद्ध पत्र लिखा। उन्होंने राजा अर्तहशस्ता को जो लिखा वह यह था। शासन अधिकारी रहूम, सचिव शिमशाई तथा तरपली, अफारसी, एरेकी, बाबेली और शूशनी के एलामी लोगों के न्यायाधीश और महत्वपूर्ण अधिकारियों की ओर से तथा वे अन्य लोग जिन्हें महान और शक्तिशाली ओस नपर ने शमरिया के नगरों एव परात नदी के पश्चिमी प्रदेश के अन्य स्थानों पर बसाया था। यह उस पत्र की नकल है जिसे उन लोगों ने अर्तहशस्ता को भेजा था। महाराज अर्तहशस्ता को महाराज के दास लोग जो परात नदी के पश्चिमी प्रदेश से हैं, महाराज को यह मालूम हो कि वे यहूदी जो आपके द्वारा ही भेजे गए हैं हमारे क्षेत्र यरूशलेम में आ चुके हैं। वे उस विद्रोही तथा घिनौनी नगर को दोबारा बना रहे हैं। अब वे शहरपना को बनाकर नींव को मजबूत कर रहे हैं। महाराज को यह मालूम हो कि यदि उस नगर को दोबारा बना दिया जाएगा और इसकी शहरपना बन गई, तब ये लोग आपको ना तो कोई भेंट चढ़ाएंगे, ना चुंगी देंगे और ना ही कोई कर, जिससे राजकीय खजाने की बहुत हानि हो जाएगी। इसलिए कि हम राज मंदिर में काम करते हैं, हम महाराज को अपमानित होते हुए नहीं देख सकते। सो हम महाराज को इसकी खबर दे रहे हैं कि आप अपने पुरखों की पुस्तकों में खोज करवाए। इन पुस्तकों के द्वारा आपको मालूम हो ही जाएगा कि यह नगर विद्रोही नगर ही रहा है, जिसने बाकी राजाओं की हानि ही की है। पुराने समय से ही यह नगर राजद्रोह फैलाता ही रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह नगर उजाड़ पड़ा हुआ है। हम महाराज को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि यह नगर दोबारा बन जाएगा, यदि इसकी शहरपना दोबारा बन जाएगी, तो नदी के उस पार के प्रदेश पर आप अपने भाग को खो देंगे। सो राजा ने सेनापति रहूम, शास्त्री शिमशाई तथा शमरिया में तथा नदी के पार के प्रदेश में चुने हुए उनके बाकी सहयोगियों को यह उत्तर भेजा। आप सभी का भला हो। आप सभी के द्वारा भेजे गए पत्र का अनुवाद मेरे सामने पढ़ा गया। मेरे द्वारा एक राज आज्ञा दी जा चुकी है तथा इस विषय में खोज भी की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह बात साफ हो चुकी है कि यह नगर पुराने समय से ही राज विद्रोह करता रहा है तथा इसके द्वारा दंगा और बलवा किया जाता रहा है। प्रतापी राजाओं ने यरूशलेम पर शासन किया है तथा उनका शासन इस नदी के पार के सभी प्रदेशों पर रहा है तथा इन्हें भेंटे, चुंगी तथा कर दिए जाते रहे हैं। तब अब यह आदेश जारी कर दीजिए कि ये लोग इस कार्य को रोक दे तथा मेरे आदेश के बिना यह नगर दोबारा बसाने का काम ना करें। सावधान रहिए, इस आदेश के पालन में कोई भी ढिलाई ना होने पाए। भला क्या लाभ होगा अगर राजाओं की हानि का खतरा बढ़ जाएगा। जैसे ही राजा अर्तहशस्ता के पत्र का अनुवाद रहूम तथा शास्त्री शिमशाई तथा उनके सहयोगियों के सामने पढ़ा गया, उन्होंने बिना देर किए यरूशलेम जाकर अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती उन यहूदियों को आगे काम करने से रोक दिया। इस प्रकार यरूशलेम में परमेश्वर के भवन का काम रुक गया। यह काम फारस के राजा दारियावेश के शासनकाल के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। एज़रा अध्याय 5। राजा दारियावेश को ततेनाई का पत्र। जब भविष्यद्वक्ता हाग्य तथा इद्दो के पुत्र भविष्यद्वक्ता जकरिया ने उन यहूदियों के लिए जो यहूदिया तथा यरूशलेम में रह रहे थे इज़राइल के परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी की, तब शलतियेल के पुत्र जेरुबाबेल तथा योजादक के पुत्र येशुआ ने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को बनाने का काम दोबारा शुरू कर दिया। उन्होंने परमेश्वर के इन भविष्यवक्ताओं का पूरा साथ था। उसी समय उस नदी के पार के प्रदेश के राज्यपाल ततेनाई शेथर बोजनाई तथा इनके सहयोगी आकर उनसे यह पूछने लगे, किसने तुम्हें इस भवन को दोबारा बनाने की आज्ञा दी है? परमेश्वर के भवन बनाने वालों के नाम क्या है? किंतु बात यह थी कि उनके परमेश्वर की कृपा दृष्टि यहूदियों के पुरनियों पर बनी थी और वे उन्हें तब तक ना रोक सके जब तक यह समाचार दार्यावेश तक ना पहुंचा। तब इससे संबंधित उत्तर पत्र लिखकर दिया गया। उस नदी के पार के प्रदेश के राज्यपाल ततेनाई तथा शेथर बोजनाई तथा उसके सहयोगी अधिकारियों ने मिलकर राजा दार्यावेश को एक पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने यह लिखकर भेजा, महाराज दार्यावेश, आप सभी का भला हो। महाराज को यह मालूम हो कि हमने यहूदिया प्रदेश के महान परमेश्वर के भवन का निरीक्षण किया है, जिसको विशालकाय पत्थरों से बनाया जा रहा है, इसकी शहरपना को लकड़ी से मजबूत किया जा रहा है, सारा काम बहुत ही तेजी से किया जा रहा है और उनका यह काम सफल भी होता जा रहा है। यह देखकर हमने उन पुरनियों से प्रश्न किया, किसके आदेश से आप यह भवन बना रहे हैं और इसका काम पूरा करते जा रहे हैं? आपको बताने के उद्देश्य से हमने उनके नाम भी पूछ लिए, इसलिए भी कि हम उनके अधिकारियों के नाम पत्र में लिख सकें। उन्होंने हमें यह उत्तर दिया, हम तो स्वर्ग तथा पृथ्वी के परमेश्वर के सेवक हैं और उस भवन को दोबारा बना रहे हैं जिसको कई वर्षों पहले बनाया गया था इज़राइल के एक प्रतापी राजा के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि हमारे पुरखों ने स्वर्ग के परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया था। परमेश्वर ने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नबूकदनेज़र के अधीन कर दिया, जिसने इस भवन को खत्म कर दिया तथा देशवासियों को बाबेल में बंदी बना लिया था। फिर भी बाबेल के राजा महाराज कोरेश ने अपने शासन के पहले वर्ष में यह राज आज्ञा दे दी कि परमेश्वर के भवन को दोबारा बनाया जाए। इसके अलावा परमेश्वर के भवन जो यरूशलेम में था, जिसके सोने और चांदी के बर्तन जिसे नबूकदनेज़र द्वारा ले जाए गए, वे सभी महाराज कोरेश के आदेश से बाबेल के भवन से निकाल लिए गए तथा शेष बाजजर नामक व्यक्ति को सौंप दिए गए। इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया गया था। महाराज ने ही उसे आदेश दिया था, इन बर्तनों को ले जाकर यरूशलेम के भवन में जमा कर दो तथा परमेश्वर के भवन को दोबारा अपने स्थान पर बनाया जाए। तब इसी शेष बाजर ने यरूशलेम आकर परमेश्वर के भवन की नींव रखी थी। उसी समय से अब तक यह बन रहा है, यह कार्य अब तक खत्म नहीं हुआ है। अब यदि महाराज चाहे तो बाबेल में राजकीय खजाने में खोज की जाए कि यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को दोबारा बनाने की राज आज्ञा राजा कोरेश द्वारा दी गई थी या नहीं, तब महाराज इस विषय पर अपना निर्णय हमें दे दे। एज़रा अध्याय 6। दार्यावेश की राज आज्ञा। तब राजा दार्यावेश ने एक राज आज्ञा प्रसारित की और अभिलेखागर में खोज की गई, जहां बाबेल में मूल्यवान वस्तुएं संग्रहित की जाती थीं। मेदिया प्रदेश के एक बताना गढ़ में एक चर्म पात्र प्राप्त हो गया, जिसमें लिखी विषय वस्तु इस प्रकार थी, स्मारक पत्र। राजा कोरेश के शासन के प्रथम वर्ष में राजा कोरेश ने यह राज आज्ञा प्रसारित की, यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को, जहां बलियां अर्पित की जाती है, उन्हें निर्मित किया जाए, इसकी नींवों को पूर्ववत ही रखा जाए, इसकी ऊंचाई 27 मीटर तथा चौड़ाई 27 मीटर होगी, इसके लिए विशालकाय शिलाओं के 3 स्तर तथा 1 स्तर काठ का होगा, इसके लिए आवश्यक धनराशि राजकीय कोष से प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त परमेश्वर के भवन के वे सभी स्वर्ण एवं रजत पात्र जो नबूकदनेज़र द्वारा यरूशलेम भवन से बाबेल लाए गए थे, यरूशलेम के इसी भवन में यथा स्थान रख दिए जाए। तुम इन सभी को परमेश्वर के भवन में रख दोगे। तब अब नदी के पार के प्रदेश के राज्यपाल ततेनाई शेथर बोजनाई तथा तुम्हारे सहकर्मी नदी के पार के प्रदेशों के अधिकारियों इस स्थान से दूर रहो। परमेश्वर के भवन के कार्य के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। यहूदी राज्यपाल तथा यहूदियों के पुरनियों को परमेश्वर के भवन के पुनर्निर्माण का कार्य उसके नियत स्थान पर करने दिया जाए। इसके अतिरिक्त मैं एक राज आज्ञा प्रसारित कर रहा हूँ कि तुम्हें परमेश्वर के भवन के पुनर्निर्माण में संलग्न यहूदियों के पुरनियों से कैसा व्यवहार करना होगा। नदी के पार के प्रदेशों से प्राप्त कर में से इन लोगों को राजकीय खजाने से बिना रोके या देर किए धन प्रदान किया जाए। उनकी गेहूं, नमक, दाख मधु और तेल की आवश्यकता चाहे जितनी भी हो, स्वर्ग के परमेश्वर के लिए होमबलि अर्पण के निमित्त बछड़े, मेढ़े, मेमने, गेहूं, लवन, द्राक्षारस तथा अभिषेक का तेल, जैसा कि यरूशलेम के पुरोहितों का आग्रह है, उन्हें प्रतिदिन बिना चूक प्रदान किया जाता रहे, कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को बलिदान अर्पित करते हुए राजा एवं उसके पुत्रों के जीवन के लिए प्रार्थना कर सके। मैं यह राज आज्ञा भी प्रसारित कर रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति इस राज आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसके घर से काठ की बल्ली खींची जाएगी, उसे इस पर मृत्यु दंड दिया जाएगा तथा इसके कारण उसके आवास को कूड़े का ढेर बना दिया जाएगा। वह परमेश्वर जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को वहां बनाकर रखा है, ऐसे किसी भी राजा या प्रजा को गिरा दे जो इस राज आज्ञा को इसलिए टालने का प्रयास करता है कि यरूशलेम में परमेश्वर के इस आवास को नाश किया जा सके। मैं दार्यावेश हूँ जिसने यह राज आज्ञा प्रसारित की है। इसका वस्तुतः पालन पूर्ण सावधानी से किया जाए। पुनर्निर्माण समापन एवं समर्पण। उस नदी के पार के प्रदेश के राज्यपाल ततेनाई शेथर बोजनाई तथा उनके सहकर्मियों ने पूर्ण सावधानी से इस आदेश का पालन किया, जैसा जैसा राजा दार्यावेश का आदेश था। यहूदियों के पुरनियों ने भविष्यद्वक्ता हाग्य तथा इद्दो के पुत्र जकरिया की भविष्यवाणी के अनुरूप यह निर्माण पूरा करने में सफलता हासिल की। इस निर्माण का पूर्ण होना इसराइल के परमेश्वर के आदेश तथा फारस के राजा कोरेश, दार्यावेश तथा अर्तहशिस्ता की राज आज्ञा के अनुसार हुआ। भवन पुनर्निर्माण का यह कार्य अदर माह की तीसरी तिथि पर पूर्ण हुआ। यह राजा दार्यावेश के शासन का छठा वर्ष था। इसराइल वंशज, पुरोहित, लेवी तथा शेष रहने वालों ने बड़े ही आनंद पूर्वक परमेश्वर के भवन के अर्पण के उत्सव को मनाया। परमेश्वर के इस भवन के अर्पण उत्सव में उन्होंने 100 बछड़े, 200 मेढ़े, 400 मेमने अर्पित किए तथा इसराइल के निमित्त पाप बलि करके 12 बकरे इसराइल के 12 गोत्रों के अनुसार अर्पित किए। तब उन्होंने अपने अपने विभागों के लिए पुरोहित तथा क्रम के अनुसार लेवी भी यरूशलेम में परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त कर दिए, जैसा कि मोशे लिखित विधान में निर्दिष्ट है। फसह उत्सव। वे जो रहने वाले थे उन्होंने प्रथम माह के 14वें दिन फसह उत्सव को मनाया। क्योंकि पुरोहितों एवं लेवियों ने साथ ही अपने को पवित्र कर लिया था, वे सभी अब संस्कार के अनुसार शुद्ध किए गए थे। तब उन्होंने सभी रहने वालों के लिए फसह मेमना वध किया, सह पुरोहितों के लिए तथा स्वयं अपने लिए। इसराइल वंशज जो निर्वासन से लौट आए थे तथा वे सभी जिन्होंने स्वयं को उस देश की अशुद्धता से अलग कर लिया था, उनके साथ हो गए थे कि वे यहावे इसराइल के परमेश्वर की खोज करें। इन्होंने फसह के भोज का सेवन किया। तब उन्होंने बड़े ही आनंद पूर्वक 7 दिन खमीर रहित रोटी का उत्सव भी मनाया। यहावे ने उन्हें आनंदित किया था, यहावे ने ही अश्शूर के राजा का हृदय उनकी ओर फेर दिया था कि वह उन्हें इज़राइल के परमेश्वर के भवन के कार्य के लिए सहायता करें। एज़रा अध्याय 7। एज़रा की बाबेल से यरूशलेम यात्रा। इन घटनाओं के बाद फारस के राजा अर्तहशस्ता के शासनकाल में एज़रा बाबेल से लौट आए। एज़रा सेराइया के पुत्र थे, सेराइया अज़रिया का, अज़रिया हिल्किया का, हिल्किया शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहितूब का, अहितूब अमरिया का, अमरिया अज़रिया का, अज़रिया मेरायोत का, मेरायोत ज़ेराइया का, ज़ेराइया उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशुआ का, अबीशुआ फिनिहास का, फिनिहास एलियाज़र का, एलियाज़र प्रमुख पुरोहित अहरोन का पुत्र था। एज़रा बाबेल से लौट आए, वह मोशे को यहावे इज़राइल के परमेश्वर के द्वारा सौंपी गई व्यवस्था के विशेषज्ञ थे। यहावे उनके परमेश्वर का आशीर्वाद एज़रा पर बना हुआ था। तब राजा ने उन्हें वह सब दिया जिस जिस वस्तु को उन्होंने मांगा था, कुछ इज़राइली, कुछ पुरोहित, लेवी, गायक, द्वारपाल तथा भवन के कर्मचारी। राजा अर्तहशस्ता के शासनकाल के 7वें वर्ष में यरूशलेम पहुंचे। स्वयं एज़रा राजा के शासनकाल के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम पहुंचे। उन्होंने बाबेल से अपनी यात्रा पहले महीने के पहले दिन से शुरू की थी तथा वह 5वें महीने के पहले दिन यरूशलेम पहुंच गए थे, क्योंकि उनके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी हुई थी। एज़रा ने स्वयं को यहावे की व्यवस्था के अध्ययन, स्वयं उसका पालन करने तथा इज़राइल राष्ट्र में यहावे की विधियों और नियमों की शिक्षा देने के लिए समर्पित कर दिया था। एज़रा के पक्ष में राजा का आदेश। पुरोहित विधि विशेषज्ञ यहावे द्वारा इज़राइल के लिए ठहराए गए उन आदेशों और विधियों में प्रशिक्षित एज़रा को राजा अर्तहशस्ता ने राजा की आज्ञा सौंपी थी, उसकी नकल यह है। अर्तहशस्ता राजा की ओर से एज़रा को, जो पुरोहित और स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था के गुरु हैं, नमस्कार। मैंने इसी समय एक राजा की आज्ञा दी है कि मेरे राज्य में इज़राइल देश का कोई भी नागरिक, उनके पुरोहित और लेवी यदि चाहे तो आपके साथ यरूशलेम जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप राजा द्वारा आपके ही परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो आपके ही पास हैं यहूदिया प्रदेश तथा यरूशलेम के विषय में पूछताछ करने के उद्देश्य से राजा के साथ मंत्रियों के साथ वहां भेजे जा रहे हैं कि आप अपने साथ राजा और उनके मंत्रियों द्वारा इज़राइल के परमेश्वर को, जिनका निवास यरूशलेम में है, भेंट में चढ़ाया जाने वाला सोना और चांदी भी ले जाए। आप वह सारा सोना और चांदी जो आपको पूरे बाबेल राज्य में से मिलेगा और वे भेंटे जो इज़राइली और उनके पुरोहित यरूशलेम में, उनके परमेश्वर के भवन के और उनके पुरोहित यरूशलेम में उनके परमेश्वर के भवन के निमित्त देंगे, अपने साथ ले जाएंगे। तब इस धनराशि से आप बड़ी ही सावधानी पूर्वक बछड़े, मेढ़े तथा मेमने खरीदेंगे और उनकी अग्नि बलियों तथा पेय बलियों को यरूशलेम में अपने परमेश्वर के भवन की वेदी पर चढ़ाएंगे। बचे हुए चांदी और सोने का उपयोग कैसे किया जाए, यह आप अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और अपने भाइयों की सहमति के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा वे बर्तन जो आपको आपके परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल के लिए सौंपे गए हैं, आप उन सभी बर्तनों को यरूशलेम के परमेश्वर को सौंप देंगे। तब आपके परमेश्वर के भवन के लिए जो बाकी जरूरतें हैं, जिनको पूरा करना आपकी जवाबदारी है, उसको आप राजकीय खजाने से पूरा कर सकते हैं। मैं राजा अर्तहशस्ता सभी कोषाध्यक्षों के लिए जो नदी के पार के प्रदेश के लिए चुने गए हैं, यह राज आज्ञा दे रहा हूँ। स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था के विशेषज्ञ पुरोहित एज्रा की चाहे कोई भी जरूरत हो, उसको सावधानी के साथ पूरा किया जाए, यहाँ तक यदि वह 100 तालांत चांदी, 100 कोर गेहूं, 100 बाथ दाखरस, 100 बाथ तेल तथा नमक आवश्यकता अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर द्वारा जो कुछ भी आदेश दिया गया है, वह सब स्वर्ग के भवन के लिए बड़े उत्साह के साथ पूरा किया जाए कि किसी भी रूप से राजा और उसके पुत्रों के साम्राज्य के विरोध में परमेश्वर का क्रोध ना भड़कने पाए। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आप लोगों को पुरोहितों, लेवियों, गायकों, द्वारपालों, भवन के कर्मचारियों तथा परमेश्वर के इस भवन के दासों से ना तो कर लेने की, ना भेंटे ग्रहण करने की और ना चुंगी लेने की अनुमति है। एज्रा, आप परमेश्वर के द्वारा मिली हुई अपनी बुद्धि के अनुसार न्याय और दंड अधिकारी चुन लीजिए कि वे नदी पार के प्रदेश में प्रजा के विवादों का न्याय करें, उनका भी जो आपके परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं, वे जो व्यवस्था और विधियों को नहीं जानते हैं, आप उन्हें इनकी शिक्षा दे सकते हैं। जो कोई आपके परमेश्वर की व्यवस्था और राजा के नियमों को ना माने, उसे कठोरता पूर्वक दंड दिया जाए, चाहे यह मृत्यु दंड हो, देश निकाला हो, संपत्ति जब्त करना हो या कैद। स्तुति के योग्य है यहावे, हमारे पुरखों के परमेश्वर, जिन्होंने महाराज के हृदय में इस विषय का विचार दिया कि यरूशलेम में यहावे का भवन सवारा जाए। धन्य है यहावे, जिन्होंने मुझे महाराज तथा उनके मंत्रियों तथा उनके बड़े बड़े हाकिमों की दृष्टि में अपनी कृपा से भर दिया है। इसलिए यहावे मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर होने के कारण मुझे बल मिल गया। तब मैंने इसराइलियों में से ऐसे व्यक्ति चुन लिए जो मेरे साथ हाथ बटाने के लिए यरूशलेम लौट सके। एज्रा अध्याय 8। एज्रा द्वारा नामित व्यक्ति। सम्राट अर्तहशस्ता के शासनकाल में बाबेल से जो लोग मेरे साथ लौटे थे, उनके पितरों के प्रधान और उनकी वंशावली इस प्रकार: पिनिहास वंशज, गेरशोम, इथामार वंशज, दानियेल, दाविद के वंशज, अतुश, शेखानिया के वंशज, शेखानिया, जो पारोश, जकरिया में से था तथा उसके साथ 150 पुरुष जो वंशावली में शामिल थे, पाहत मोआब के वंशज, जेराया के पुत्र एलीहोइनाई तथा उसके साथ 200 पुरुष, जट्टू के वंशज, यहाजियल के पुत्र शेखानिया के वंशज तथा उसके 300 पुरुष, योनातन के पुत्र आदीन, एबेद तथा उसके साथ 50 पुरुष, एलाम वंशज, अथालिया के वंशज, येशाया के वंशज तथा उसके साथ 70 पुरुष, शेपातिया वंशज, मिखाइल का बेटा जेबादिया जिसके साथ 80 लोग थे, योआब वंशज, यहियेल का बेटा ओबदिया जिसके साथ 218 लोग थे, शेलोमीत वंशज, योसबिया का बेटा जिसके साथ 160 लोग थे, बेबाई वंशज, बेबाई का बेटा जकरिया जिसके साथ 28 लोग थे, अजगाद वंशज, अकातान का बेटा योहानन जिसके साथ 110 लोग थे, अदोनिकम वंशज, जो लोग उसके साथ गए थे उनके नाम ये हैं: एलीफेलेत, येयेल और शेमाया, और उनके साथ 60 लोग थे, बिगवाई वंशज, उथाई और जक्कूर थे और उनके साथ 70 लोग थे। यरूशलेम को वापसी। इसके बाद मैंने इन्हें अहावा की दिशा में बहने वाली नदी के तट पर इकट्ठा किया। हमने वहां 3 दिनों के लिए डेरे डाल दिए। जब मैंने इन लोगों का निरीक्षण किया तो मुझे यह मालूम हुआ कि इन लोगों में एक भी लेवी ना था। सो मैंने एलियाजर, अरियेल, शेमाया, एलनाथान, यारीब, एलनाथन, नाथान, जकरिया तथा मेशुल्लाम को, जो प्रधान थे, तथा योई आरीब तथा एलनाथन जो शिक्षक थे बुलवा लिया। इन सभी को मैंने कासिफिया नामक स्थान के अधिकारी के पास भेज दिया। मैंने उन्हें विशेष निर्देश दिए कि उन्हें इद्दो तथा उसके संबंधियों के सामने क्या कहना होगा। ये सभी कासिफिया के भवन के कर्मचारी थे तथा इनसे यह उम्मीद थी कि ये परमेश्वर के भवन के लिए हमें सेवक देंगे। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि होने के कारण उन्होंने हमारे सामने इज़राइल के पुत्र लेवी के वंशज महाली के पुत्रों में से एक ऐसा व्यक्ति दिया जो सक्षम व्यक्ति था, अर्थात शेरेबिया तथा उसके पुत्रों और रिश्तेदारों में से एक ही 18 व्यक्ति थे, और हशाबिया को और उसके संग मीरारी के वंश में से येशाया को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और न 3 लोगों में से जिन्हें दाविद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सभी के नाम लिखे हुए थे। इसके बाद मैंने अहावा नदी के तट पर उपवास की घोषणा की कि हम स्वयं को अपने परमेश्वर के सामने नम्र बनाए और उनसे अपने लिए इस यात्रा में अपने अपने बालकों तथा वस्तुओं की सुरक्षा की प्रार्थना करें। मार्ग में शत्रुओं से सुरक्षा के उद्देश्य से महाराज से सैनिकों और घुड़सवारों की याचना करने में मुझे संकोच हो रहा था, क्योंकि हम महाराज से यह कह चुके थे हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन सभी पर बनी रहती है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। उनका सामर्थ्य और उनका क्रोध उन सबके विरुद्ध हो जाता है जो उनको त्याग देते हैं। सो हमने उपवास किया तथा इस विषय में परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की, और उन्होंने हमारी सुन ली। इसके बाद मैंने 12 मुख्य पुरोहितों को इस काम के लिए चुना, शेरेभ्या, अशाभ्या तथा उनके साथ 10 दूसरे पुरोहित। मैंने चांदी, सोने और उन सभी बर्तनों को तोला तथा राजा, उनके मंत्रियों, उनके शासकों तथा वहां उपस्थित सारी इज़राइल द्वारा प्रस्तुत भेंटों को उन्हें सौंप दिया। इस प्रक्रिया में मैंने माप कर 650 तालंत चांदी और बर्तन जिनका मान 100 तालंत था, तथा सोने के 100 तालंत तथा 20 सोने के कटोरे जिनका मूल्य था 1000 दारीक, तथा 2 बर्तन कीमती चमकीले कांसे के सोने के समान कीमती। इसके बाद मैंने उन्हें यह याद दिलाते हुए चेताया, आप लोग यहावे के लिए पवित्र अलग किए हुए लोग हैं, वैसे ही ये बर्तन भी पवित्र हैं, तथा चांदी, सोने और स्वेच्छा भेंटे भी जो यहावे आपके पूर्वजों के परमेश्वर को चढ़ाई गई हैं। इनकी रखवाली करते हुए इन्हें सुरक्षित रखिए तथा यरूशलेम पहुंचकर इन्हें प्रधान पुरोहितों, लेवियों तथा इज़राइल के गोत्रों के प्रधानों को यहावे के भवन के कमरों में ले जाकर सौंप देना। सो पुरोहितों तथा लेवियों ने वे तोले हुए चांदी, सोने और बर्तनों को यरूशलेम में हमारे परमेश्वर के भवन तक ले जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद हमने पहले महीने की 12वीं तारीख को अहावा नदी के तट के पड़ाव से यरूशलेम के लिए कूच किया। हम पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी हुई थी। तब उन्होंने शत्रुओं एवं मार्ग में घात लगाए हुए डाकुओं से हमारी रक्षा की। हम यरूशलेम पहुंच गए तथा वहां 3 दिन ठहरे रहे। चौथे दिन चांदी, सोने और बर्तन भवन में जाकर पुरोहित उरिया के पुत्र मेरे मौत को तोलकर सौंप दिए गए। इसका गवाह था फिनिहास का पुत्र एलियाजर तथा इन दोनों के अलावा वहां लेवी येशुआ का पुत्र योजाबाद तथा बिन्नुई का पुत्र नोआदिया भी उपस्थित थे। हर एक वस्तु गिनी और तोली हुई थी तथा उनका तोल उसी समय वहां लिख लिया गया था। बंधुआई से लौट आए पहले के बंदियों ने इज़राइल के परमेश्वर को होम बलि चढ़ाई। पूरे इज़राइल के लिए 12 बछड़े, 96 मेढे, 77 मेमने, पाप बलि के लिए 12 बकरे, ये सभी यहावे के लिए होम बलि के लिए चढ़ाए गए। इसके बाद उन्होंने नदी के पार के प्रदेशों में राज्यपालों और प्रशासकों को राजा की आज्ञा सौंप दी और उनकी ओर से परमेश्वर के भवन से संबंधित सहायता प्राप्त होने लगी। एज़रा अध्याय 9। अंतरजातीय विवाह। जब यह सब पूरा हो चुका, प्रशासकों ने आकर मुझसे कहा, इसराइलियों ने, पुरोहितों ने तथा लेवियों ने स्वयं को इस देश के मूल निवासियों, कनानियों, हित्तियों, परिजियों, यबूसियों, अमोनियों, अमोरी तथा मोआबियों की घृणित जीवन शैली से अलग नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने उनकी कुछ कन्याओं से विवाह कर लिया है तथा कुछ का विवाह अपने पुत्रों से कर दिया है। परिणाम स्वरूप यह पवित्र अलग किया हुआ राष्ट्र इन राष्ट्रों में मिल चुका है। सच तो यह है कि शासक और अधिकारी इस विश्वासघात में सबसे आगे रहे हैं। यह सुनकर मैंने अपना वस्त्र और बागा फाड़ दिया तथा सिर के कुछ बाल तथा दाढ़ी के कुछ बाल भी नोच दिए और निराश होकर बैठ गया। उस समय वे सभी जो इन बंधुआई से आए लोगों के इस विश्वासघात के कारण भयभीत हो गए थे, मेरे पास इकट्ठे हो गए। मैं शाम तक निराश बैठा रहा। जब सांझ की बलि का समय हो गया, मैं अपने विलाप की दशा से उठा। मेरे वे वस्त्र फटे हुए ही थे। मैंने घुटनों पर आ यहावे अपने परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ा दिए और यह दोहाई दी, मेरे परमेश्वर, मैं इतना लज्जित और परेशान हूं कि मैं आपकी ओर आंख तक नहीं उठा सकता। मेरे परमेश्वर, हमारा अधर्म तो हमारे सिरों से भी ऊपर उठ चुका है तथा हमारे दोष तो आकाश तक पहुंच चुके हैं। हमारे पूर्वजों के समय से लेकर आज तक हम घोर दोष में डूबे हुए हैं। हमारे अधर्म के कारण हमें, हमारे राजाओं को तथा हमारे पुरोहितों को अन्य राष्ट्रों की तलवार, बंधुआई, लूट तथा लज्जा का सामना करना पड़ा है तथा यह स्थिति आज भी वही है। किंतु अब यहावे हमारे परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हम पर कृपा दृष्टि की है। आपने हमारे लिए एक भाग छोड़ रखा है कि हमें आपके पवित्र स्थान में जगह मिल सके, कि परमेश्वर हमारी आंखों में नई रोशनी देकर हमारी बंधुआई में हमें कुछ शांति दे। क्योंकि सच यह है कि हम तो सिर्फ दास ही हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमें फारस के राजाओं की नजरों में दया प्रदान की है कि हम ताजगी पाकर अपने परमेश्वर के भवन को दोबारा बना सके, कि हम खंडरों को सुधारते हुए यहूदिया एवं यरूशलेम के लिए शहरपना खड़ी कर सके। अब हमारे परमेश्वर, इसके बाद हमारे सामने कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। हमने तो आपकी आज्ञाएं तोड़ दी हैं जो हमें आपने अपने सेवकों, उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन शब्दों में दी थी, तुम लोग जिस देश पर अधिकार करने के लक्ष्य से उसमें प्रवेश कर रहे हो, एक अशुद्ध देश है जिसे उन राष्ट्रों के लोगों ने अशुद्ध कर दिया है। उनके घिनौने कामों ने इस देश को एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी ही अशुद्धताओं से भर दिया है। इसलिए अब ना तो अपनी पुत्रियां उनके पुत्रों की पत्नियां होने के लिए दोगे और ना ही उनकी पुत्रियां अपने पुत्रों की पत्नियां होने के लिए लोगे। कभी भी उनकी शांति की दिशा में कोई कोशिश ना करना और ना उनके बलवंत होने के लिए कोई सहायता ही देना। इससे तुम बलवान होते जाओगे तथा भूमि की सबसे अच्छी उपज को खाते हुए अपनी संतानों के लिए सदा की मीरास छोड़ सकोगे। जबकि सच यही है कि हम पर यह स्थिति सिर्फ हमारे ही बुरे कामों और घोर अपराधों के कारण आई है। इतना होने पर भी परमेश्वर, आपने हमारे अधर्म के प्रति सही दंड देने में धीरज बनाए रखा और हमें यह भाग सौंप दिया है। क्या हमारा दोबारा आपके आदेशों को त्याग कर घृणित जीवन बिताने वाले लोगों के साथ वैवाहिक संबंध रखना सही होगा? क्या आपका हम पर क्रोधित होना, हाँ यहाँ तक क्रोधित हो जाना, जिससे आपके द्वारा हमें नाश कर देने में कुछ बाकी ना रह जाए, और ना ही कोई रह जाए, यहावे इज़राइल के परमेश्वर, आप तो धर्मी हैं, हम तो सिर्फ आज यहाँ बच निकले भाग ही हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम आपके सामने दोषियों के रूप में उपस्थित हैं, जबकि इस स्थिति में तो कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। एज़रा अध्याय 10। परमेश्वर से मेल मिलाप। जब एज़रा परमेश्वर के भवन के सामने भूमि पर दंडवत कर प्रार्थना करते हुए पाप स्वीकार करते हुए रो रहे थे, इज़राइल के पुरुषों, स्त्रियों एवं बालकों की एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो चुकी थी। वे सभी फूट फूट कर रो रहे थे। एलाम कुल के यहियेल के पुत्र शेखानिया ने एज़रा से कहा, हम अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे हैं और हमने इस देश के लोगों में से विदेशी स्त्रियों से विवाह कर लिया है। यह सब होने पर भी इज़राइल के लिए अब एक ही आशा बची है, इसलिए अब आइए हम अपने परमेश्वर से वाचा बांधे तथा अपनी सभी पत्नियों तथा उनसे पैदा बालकों को छोड़ दें, जैसा कि मेरे प्रधान तथा उनका जिन्हें परमेश्वर के इस आदेश के प्रति पूर्ण विश्वास है, उनकी सलाह है, यह सब व्यवस्था के अनुसार ही पूरा किया जाए। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यह अब आपकी ही जवाबदारी है, हम आपके साथ हैं, आप साहस के साथ इसको कीजिए। यह सुन एज़रा उठे तथा सभी अगुए पुरोहितों, लेवियों तथा सारे इज़राइल को यह शपथ लेने के लिए प्रेरित किया कि वे इस प्रस्ताव के अनुसार ही करेंगे, इसलिए उन्होंने यह शपथ ली। तब एज़रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठे और एलियाशिब के पुत्र यहोहानन के कमरे में चले गए। वह उस कमरे में चले जरूर गए, मगर उन्होंने वहां ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, क्योंकि वह निकाले गए लोगों द्वारा किए गए इस विश्वासघात के लिए दुखी थे। उन सभी ने सारे यहूदिया तथा यरूशलेम में निकालकर लाए लोगों के लिए यह घोषणा की कि उन्हें यरूशलेम में इकट्ठा होना है, तथा जो कोई प्रधानों और प्राचीनों की सलाह के अनुसार 3 दिनों के भीतर वहां उपस्थित ना होगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी तथा स्वयं उसे बंधुआई से निकल आए लोगों की सभा से निकाल दिया जाएगा। तब यहूदिया तथा बिन्यामीन के सारे पुरुष 3 दिनों के अंदर यरूशलेम में इकट्ठा होने को गए। यह अवसर था 9वें महीने की 20वीं तारीख का। सभी इस अवसर पर परमेश्वर के भवन के सामने खुले आंगन में बैठे हुए थे। इस विषय के कारण वे भयभीत थे तथा मूसलाधार बारिश भी हो रही थी, तब उन पर कपकपी छाई हुई थी। पुरोहित एज़रा खड़े हो गए तथा उन्हें संबोधित करने लगे, आप लोगों ने विश्वासघात किया और विदेशी स्त्रियों से विवाह करने के द्वारा आपने इज़राइल पर दोष बढ़ा दिया है। तब यही मौका है कि आप लोग यहावे अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने अपने पाप स्वीकार करें तथा उनकी संतुष्टि के लिए उपयुक्त कदम उठाएं, स्वयं को इस देश के मूल निवासियों से तथा विदेशी स्त्रियों से अलग कर लीजिए। ऊंची आवाज में उपस्थित भीड़ ने घोषणा की, जो आज्ञा, जो कुछ आपने कहा है हम वही करेंगे, किंतु हम लोगों की संख्या बड़ी है, फिर यह बरसात ऋतु है, तब हम खुले में खड़े ना रह सकेंगे। इसके अलावा यह काम ऐसा नहीं जो 1 अथवा 2 दिन में पूरा हो जाए, क्योंकि हमारे पाप बहुत ही भयंकर हो चुके हैं। हमारे प्रधान सारी सभा की अगुवाई करे तथा वे सभी नगरवासी जिनकी विदेशी पत्नियां हैं, निर्धारित अवसर पर हर एक नगर के प्राचीनों एवं न्याय अध्यक्षों के साथ यहां आ जाए कि इस विषय के कारण हमारे परमेश्वर का यह भड़का हुआ क्रोध हम पर से शांत हो जाए। इस प्रस्ताव का विरोध सिर्फ 2 व्यक्तियों ने किया, आसाहेल के पुत्र योनातन तथा तिकवा के पुत्र यहाजियेल। लेवी शबेथाई ने इन दोनों का समर्थन किया। उन सभी बंधुआई से आए लोगों ने एज़रा द्वारा सुझाई गई योजना का समर्थन किया पुरोहित एज्रा ने नामों का उल्लेख करते हुए पितरों के प्रधानों को चुना। ये सभी दसवें महीने के पहले दिन इस विषय से संबंधित सच्चाइयों का परीक्षण करने इकट्ठा हो गए। विदेशी स्त्रियों से विवाहित सभी पुरुषों का परीक्षण पहले महीने की पहली तारीख पर पूरा हो गया। अंतर्जातीय विवाह के दोषी। पुरोहितों के उन पुत्रों में से वे जिन्होंने विदेशी स्त्रियों से विवाह कर लिया था, ये थे योजादक का पुत्र येशुआ तथा उसके भाई मासेहिया, एलियाजर, यारीब तथा गेदालिया। उन्होंने शपथ ली कि वे अपनी पत्नियों को छोड़ देंगे, तब इसलिए कि वे दोषी थे। उन्होंने भेड़ बकरियों में से इस दोष से छूटने के लिए एक मेढ़े की बलि चढ़ाई। इमर के पुत्रों में से थे अनानी तथा जेबादिया। आरीम के पुत्रों में से थे मासेहिया, एलिया, शेमाया, यहियेल तथा उज्जिया। पशहूर के पुत्रों में से एलियोनाई, मासेहिया, इश्माइल, नेथानेल, योजाबाद तथा एलासा। लेवियों में से थे योजाबाद, शीमेई, केलाहिया अर्थात केलीता, पेथाइया, यहूदा तथा एलियाजर। गायक वृंदों में से था एलियाशिब, द्वारपालों में शल्लूम, तेलेम तथा उरी। इज़राइल में पारोश के पुत्रों में से थे रामिया, इजिया, मालखिया, मियामीन, एलियाजर, मालखिया तथा बेनहिया। एलाम के वंशजों में से थे मतनिया, जकरिया, यहियेल, अब्दी, येरेमोथ तथा एलिया। जत्तू के पुत्रों में से थे एलियोनाई, एलियाशिब, मतनिया, येरेमोथ, जाबाद तथा आजीजा। बेबाई के पुत्रों में से थे यहोहानन, अननिया, जब्बाई तथा अथलाई। बानी के पुत्रों में से थे मेशुल्लाम, मल्लूक तथा अधाइया याशूब, शेयल तथा येरेमोथ। पाहत मोआब के पुत्रों में से थे आदना, चेलल, बेनहिया, मासेहिया, मथनिया, बसलेल, बिन्नुई तथा मनशशे। आरीम के पुत्रों में से थे एलियाजर, इशिया, मालकिया, शेमाया, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लूक तथा शेमारिया। आशूम के पुत्रों में से थे मथेनाई, मथाता जाबाद, एलिफेलेत, येरेमाई, मनशशे तथा शीमेई। बानी के पुत्रों में से थे माघई, अमराम, उएल, बेनहिया, बेधेया, चेलुही, वानिया, मेरेमोत, एलियाशिब, मथनिया, मतेनाई, यासु। बानी, बिन्नुई के पुत्रों में से थे शीमेई, शेलेमिया, नाथान, अधाइया, माखना देबाई, शाशाई, शाराई, अजारेल, शेलेमिया, शेमारिया, शल्लूम, अमरिया तथा योसेफ। नेबो के पुत्रों में से थे येईएल, मतीथिया, जाबाद, जेबीना, यद्दई, योएल तथा बेनहिया। इन सभी ने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया था तथा इनमें से कुछ के इन स्त्रियों से संतान भी पैदा हुई थी।